ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। इस सेशन का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर बीके स्वीता। हम सभी की ओर से डॉक्टर बीके स्वीता का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं, आप MBBS हैं, आपने 9 साल ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं दी हैं। आपकी बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रही है, जिसकी वजह से आपने मेडिकल सेवाओं के साथ साथ आध्यात्मिक सेवाएं भी की हैं। आप पूर्व प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी की पर्सनल डॉक्टर भी रही हैं। आप वोमेन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपको कई सम्मान प्राप्त हैं। आपने भारत सरकार द्वारा आयोजित ईयर ऑफ वोमन एम्पावरमेंट में पार्टिसिपेट किया। आप बीके एकेडमी के स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट आदि की फैकल्टी मेंबर हैं। आपने यूके अमेरिका जैसे देशों में ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए हैं। आपने कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी कार्यक्रम करवाए हैं। इसी के साथ हम डॉक्टर बीके स्वीता का स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन का प्रारंभ करें। ओम शांति।
ओम शांति। जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो आज स्ट्रेस विश्वव्यापी समस्या है। हर कोई तनाव का अनुभव करता है। कहते हैं स्थिति ऐसी है कि तनाव से हो गई है दोस्ती, इस कदर तनाव होता है तनाव के न होने पर। आज हमारी हालत यह है कि अगर तनाव नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं कि क्या हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमें कुछ स्ट्रेस ही नहीं हो रहा है। और बच्चे भी आज तनाव का अनुभव करते हैं, छोटे बच्चे भी। हमारे यहाँ बहुत विंग्स बने हुए हैं, आपने सुना होगा, तो उसमें एक मेडिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए स्वास्थ्य मेले लगाते हैं, और हम भी मेडिकल विंग में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो ऐसे ही एक शहर में मेडिकल विंग ने हेल्थ मेला लगाया था। उसमें कई स्टॉल थे, उसमें एक स्टॉल ये भी था कि यहाँ आप अपनी कोई बुराई दान कर सकते हैं। बुराई माना अगर कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, या कोई भी ऐसे व्यसन की आदत है तो वो अपना दान कर सकते हैं। तो एक माता पिता अपने बेटे को वो मेला दिखा रहे थे, उसके साथ देख रहे थे। तो जब उस स्टॉल पर पहुंचे तो माँ को बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो, तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, तुम अपनी चॉकलेट यहाँ दान कर दो। तो वो बच्चा बोलता है, माँ मुझे सोचने दो, मुझे क्या दान करना है। और वो फिर कहता है, मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूं, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होता है। तो आज का समय ये है कि हम जो भी स्टूडेंट लाइफ में हैं उनको इतना कंपटीशन है हर फील्ड में कि जब भी एग्जाम्स होते हैं तो स्ट्रेस से गुजरते हैं। और ये देखने में आता है केवल बच्चे ही नहीं, माता पिता भी स्ट्रेस से गुजरते हैं। शायद कई बार बच्चों से ज्यादा माँ बाप को टेंशन होता है बच्चों के एग्जाम्स का। तो इसीलिए कहा 18वीं सदी जो थी वो ज्ञान में उन्नति की सदी थी, 19वीं सदी को आविष्कारों की सदी कहा गया। परिणाम स्वरूप जो 20वीं सदी होनी चाहिए थी वो तो सुख और शांति की सदी होनी चाहिए, इतने अच्छे अच्छे सुख सुविधा के साधन मनुष्य को मिले, लेकिन उसे कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं। मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर यही हमारी लाइफस्टाइल रही तो ये 21वीं सदी एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन हो जाएगी। और यदि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं तो फिर ये सदी ज्ञान में उन्नति की सदी थी, 19वीं सदी को आविष्कारों की सदी कहा गया। परिणाम स्वरूप जो 20वीं सदी होनी चाहिए थी वो तो सुख और शांति की सदी होनी चाहिए, इतने अच्छे अच्छे सुख सुविधा के साधन मनुष्य को मिले, लेकिन उसे कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं। मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर यही हमारी लाइफस्टाइल रही तो ये 21वीं सदी एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन हो जाएगी। और यदि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं तो फिर ये सदी शांति की सदी भी हो सकती है। तो हम कौन सी सदी में जीना चाहते हैं, कौन सी सदी में जीना चाहते हैं सभी, क्या कहेंगे? शांति की सदी में जीना चाहते हैं या डिप्रेशन की सदी में जीना चाहते हैं? आज डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अकेले भारत में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं। लेकिन यदि हम शांति की सदी में जीना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। और इसीलिए सबसे ज्यादा स्टडीज स्ट्रेस के ऊपर 20th सेंचुरी में हुई और सबसे ज्यादा पायनियर वर्क डॉक्टर हेंसले ने किया। उन्होंने तनाव को परिभाषित किया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी। यानी तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है। प्रेशर्स यानी परिस्थितियों की मांग ज्यादा है, लेकिन उसकी तुलना में जो सामर्थ्य हमारी होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए, वो कम है। तो जो हम महसूस करते हैं, इट्स ए फीलिंग, इट्स ए काइंड ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी देयर समथिंग आई नीड टू चेंज, मुझे अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। और उस परिवर्तन को लाने के लिए जरूर हमें कुछ नया सीखना होगा। और हम ये देखते हैं प्रेशर्स चारों तरफ से आते हैं। पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं लाइफ में जिनको हम बहुत सोचते हैं, बार बार हम उसके बारे में चिंतन करते हैं और फिर वर्तमान में उसका तनाव अनुभव होता है। मानो ये बहुत हल्की चीज है, अगर मैंने इसको हाथ में लिया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर इसी रूमाल को मैंने 10 घंटे अपने हाथ में ऐसे ही पकड़ कर रख लिया तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा ना? ऐसे ही कोई बात को पकड़कर हम रख लेते हैं अपने जीवन में, जब वो बात होती है तब वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसे हम सोच सोच कर पहाड़ का रूप दे देते हैं। माना राई को हम पहाड़ बना देते हैं। और वर्तमान में भी हम उसका तनाव महसूस करते हैं, मन में भी वो दर्द देती है। ऐसे ही भविष्य की चिंता होती है, जो हम चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो एक इनसिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर, ये भी वर्तमान में महसूस करते हैं। और वर्तमान की अपनी समस्याएं होती हैं और इस तरह से ये प्रेशर्स चारों तरफ से हमारे ऊपर बने रहते हैं। फिर साइंटिस्ट हेंसले ने ये भी बताया कि जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं। ये केमिकल्स एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स कहलाते हैं, एंड दे आर लाइक स्लो पॉइजन फॉर अवर बॉडी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनसे धीरे धीरे साइकोसोमैटिक बीमारियां होती हैं, और आज 80% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। तो इसी के ऊपर स्टडी की गई, येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है, उसमें स्टूडेंट्स को उनकी 20 ईयर्स की एज में स्टडी के लिए लिया गया और उनको 2 ग्रुप में बांटा गया उनकी पर्सनालिटी के अनुसार। पहले ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, तनाव में आ जाते थे, धैर्य नहीं रख सकते थे, और दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो उसकी अपोजिट पर्सनालिटी थी, यानी शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे, अपने मन को स्थिर रख सकते थे, और फिर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। तो देखा कि उस आयु में दोनों ही ग्रुप का स्वास्थ्य सामान्य था, पर क्योंकि एक स्टडी थी तो हर 10 साल में उन्हें बुलाया जाता था हेल्थ चेकअप के लिए। तो 50 साल की उम्र तक आते आते जो पहला ग्रुप था उसमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक बीमारियां हो चुकी थी। यानी जो टेंशन वाली लाइफ जी रहे थे उनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, अल्सर्स, कोई ना कोई बीमारी हो चुकी थी, और इसीलिए उनके मृत्यु की संभावना भी दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना ज्यादा थी। तो यही कारण है कि हमें अपने तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप देख रहे हैं जब हम तनाव में होते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर आता है, यानी हार्ट पर आता है, सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ने के साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और अगर कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं तो कई बार एंजाइना भी हो सकता है। इट कैन लीड टू इवन हार्ट अटैक अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं, 90% 100% तक भी ब्लॉकेजेस होते हैं, बिकॉज जो एड्रेनालिन है वो कोरोनरी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और उसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। और भी कई कारण हैं जिससे हार्ट डिजीजेस होते हैं, लेकिन स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर फॉर हार्ट डिजीजेस। इसका इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है, उससे एसिडिटी होती है, अल्सर होता है, स्टमक एक होता है, डायरिया हो सकता है। इट इफेक्ट्स अवर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है, इसलिए हेडेक होना, इनसोम्निया, नींद नहीं आती है, कई बार बहुत थकान बनी रहती है, बॉडी एक्स होते हैं, हमारी मानसिक क्षमता कम होने लगती है, क्योंकि अगेन ब्रेन को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है, उसकी वजह से एकाग्रता कम होती है, या स्मरण शक्ति पर असर आता है, या फिर हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लोग अपने तनाव को कम करने के लिए कई बार व्यसनों का सहारा लेते हैं, आइदर दे ड्रिंक अल्कोहल या स्मोक करते हैं, या तंबाकू चबाने वाले रूप में बहुत पान मसाला गुटखा जैसे उसमें ब्रांड में आता है, तो जो भी व्यसन लेते हैं वो स्वास्थ्य के लिए और ही हानिकारक होते हैं। ऐसे ही डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं, और स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है शरीर की वो भी रिड्यूस होने लगती है, इसीलिए इन्फेक्शंस भी जल्दी लग सकते हैं। अब ये सारे रोग सभी को एक जैसे नहीं होते हैं, जिसका जो सिस्टम सेंसिटिव होता है, मानो हेरिडिटरी से अगर हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं, हेरिडिटरी माना माता पिता को या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को अगर बीमारी है तो फिर वो हेरिडिटरी से आ जाती है, और उनको हार्ट के रूप में, हार्ट डिजीजेस के रूप में वो सिम्टम्स ज्यादा एक्सप्रेस होंगे। जिसका हेरिडिटरी से डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा उसके सिम्टम्स डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में ज्यादा एक्सप्रेस होंगे, यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे ही जिसका नर्वस सिस्टम हेरिडिटरी से वीक है उनके जो सिम्टम्स एक्सप्रेस होंगे वो नर्वस डिजीजेस के रूप में ज्यादा होते हैं। आप सभी तनाव के अनुभवी हैं, हा? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये कहे मुझे कभी तनाव नहीं हुआ, ना है ना कभी होगा, तो क्या कोई हाथ उठा सकते हैं? उठा सकते हैं? कोई नहीं उठा रहे, है ना? तो इसका मतलब हम सभी तनाव से गुजरते हैं, तो हम शेयर करें उसके पहले दो मिनट विल ऑब्जर्व साइलेंस विद द सॉन्ग। तो मोबाइल पे बचाए, तो आप पहले शेयर करेंगे हमसे, कोई भी शेयर कर सकते हैं, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स में स्ट्रेस फील करते हैं, चाहे वर्क प्लेस में, या ग्राउंड में अगर प्लेयर्स हैं तो कभी ग्राउंड में भी ऐसे रीजंस हो जाते हैं, या अपनी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी शेयर कर सकते हैं। या कहेंगे हाँ अभी तो हम ज्ञान सरोवर में हैं एंड सो पीसफुल, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं, कोई शेयर करना चाहेंगे? यस। तो वर्क ओवरलोड एक साथ बहुत सारे काम करना है कि जब स्थिति बन जाती है। यस। समय से काम नहीं हुआ जैसा चाहते हैं। ओके। और कोई? फ्यूचर स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर. ओके, तो इस पर भी स्टडीज हुई हैं. होम्स इन राहे अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी लाइफ में होने वाली कॉमन इवेंट्स जो सभी के साथ लगभग होती हैं उसके पर अध्ययन करके बताया कि जो भी घटना जीवन में परिवर्तन लाती है वो तनाव पैदा कर सकती है. जैसे फैमिली लाइफ में डेथ इन द फैमिली, अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और खासकर यदि वो बहुत समीप संबंध है, मानो जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है या पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाती है, तो वो बहुत तनाव देने वाली होती है और असमय दुर्घटना में मृत्यु उससे भी ज्यादा. ऐसे ही डाइवोर्स एंड सेपरेशन, पति पत्नी में अहम का टकराव होता है, दोनों साथ नहीं रह सकते, अलग रहने लगते हैं, स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है. वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये बहुत कॉमन इवेंट है, हमारे भारत में भी तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे ही मैरिज वैसे खुशी का अवसर मानते हैं लेकिन खुशी में भी कभी तनाव हो सकता है. कैसे, एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा और वो 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था जो उनके जमाने में बहुत बड़ी रकम थी. तो उन्होंने अपनी पत्नी का नंबर दे दिया उसको, है ना. बाद में भाग्य से वो लॉटरी जीत गए और पत्नी को फोन आया कि ये लॉटरी जीत गए हैं. पत्नी ने सोचा कि मेरे पति हार्ट पेशेंट है, मुझे इनसे डायरेक्ट बात नहीं करनी चाहिए, ये पता नहीं इसको किस तरह से सहन कर पाएंगे नहीं. तो उन्होंने पहले अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट किया. तो फैमिली डॉक्टर ने कहा उनको आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं बातचीत में उनको समझा दूंगा. तो गए अपने फैमिली डॉक्टर के पास. तो उसने पहले हेल्थ के बारे में पूछा, फिर समाचार की बात की और फिर कहा कि मानो आपको 10 लाख की लॉटरी लगे तो आप क्या करोगे. कहा 10 लाख की लॉटरी मिलेगी तो मैं कार ले लूंगा, मुझे कार की जरूरत है. फिर कहा यदि आपको 50 लाख की लॉटरी लगे तो क्या करोगे. तो कहा 50 लाख मिलेंगे तो मैं घर ले लूंगा. फिर कहा अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो क्या करोगे. तो उनको लगा डॉक्टर मजाक कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा डॉक्टर मैंने जरूर टिकट खरीदा है लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाएगी. तो फिर डॉक्टर ने सीरियसली कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको सचमुच 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे. तो कहा डॉक्टर अगर ये सच है तो फिर मैं 50 लाख आपको दे दूंगा. तो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया. तो यहां भी ऐसा होता है कि जो माता पिता होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है उसमें कई प्रबंध करने होते हैं, उसमें धन की समस्या हो सकती है. बेटी की शादी है तो दहेज की समस्या हो सकती है, ससुराल वालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है, ऐसी कई बातें जुड़ी हुई हैं. तो वो खुशी के साथ साथ स्ट्रेस भी देती है, मानो प्रमोशन हो जाता है तो खुशी है लेकिन साथ साथ जिम्मेवारी भी बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी दे सकती है. ऐसे ही मनी प्रॉब्लम, आज के समय में धन को हम बहुत महत्व देते हैं, यानी धन एक बहुत बड़ी शक्ति है. पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया, लेकिन आज स्थिति उल्टी है. आज हम सोचते हैं धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया. यानी लोग धन के लिए आज अपने चरित्र की भी परवाह नहीं करते, मूल्यों की परवाह नहीं करते और इससे भी आगे हम जाते हैं तो संबंधों की भी परवाह नहीं करते. कई बार धन के कारण भाई भाई के भी दुश्मन हो जाते हैं. खेलों में भी हम देखते हैं ज्यादा धन कमाने के लालच में कई बार मैच फिक्सिंग हो जाती है या बड़े बड़े सट्टे खेलों पर लगाए जाते हैं. यानी धन को यदि हमने महत्व दिया तो खेल का महत्व गौण होने लगता है, ऐसा हो जाता है. लेकिन धन जरूर जीवन की आवश्यकता है लेकिन धन सब कुछ नहीं है, ये हमें सच्चाई समझनी चाहिए. कि धन से आप किताबें खरीद के ला सकते हैं, ज्ञान तो नहीं खरीद सकते. धन से आप घड़ी खरीद के ला सकते हैं, समय थोड़ी खरीद सकते हैं. धन से आप दवाइयां खरीद के ला सकते हैं, स्वास्थ्य तो नहीं खरीद सकते, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं. तो जरूर हमें धन कमाना चाहिए लेकिन जो सच्चाई ईमानदारी से कमाया हुआ धन है वो जीवन में सुख और शांति लाता है, नहीं तो वो धन तनाव ही देता है, अशांति ही देता है। देखो बहुत अधिक धन होता है ना, वो भी मनुष्य को तनाव देता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा कब है, गवर्नमेंट से कैसे बचाया जाए उसको, चोरों से कैसे बचाया जाए। और कम धन होता है वो भी तनाव देता है, क्योंकि अगर आवश्यकताओं के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है तो वो भी एक तनाव हो जाता है। तो इंसान को सही तरीके से जितना आवश्यक है उतना धन अवश्य कमाना चाहिए, वो हमें सुख देता है। ऐसे ही बच्चों की समस्याएं कई बार होती हैं फैमिली में, जैसे बात किया बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कैरियर की चिंता माता पिता को होती है, और हरेक माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चे ऊंचे से ऊंचा कैरियर बनाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मैनेजर बने, जो भी मतलब वो उनको बनाना चाहते हैं। और आजकल अगर खिलाड़ी भी बनाते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो जो भी दिशा में हम बच्चों को कैरियर बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, और बच्चे योग्य हैं तो वो पूरा करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते, गलत संग में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल का समय पूरा मीडिया का समय है और उसका पूरा प्रभाव है, टेलीविजन है, मोबाइल्स हैं, इंटरनेट्स हैं, कहां कोई मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाएगा कुछ पता नहीं चलता है, तो फिर माता पिता को बहुत स्ट्रेस होता है। लेकिन पहले ये देखिए कि अगर बच्चा योग्य है तो ठीक, और अगर नहीं योग्य है तो देखिए उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसी क्षेत्र में उसको मार्गदर्शन करें और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। जो भी आप उनसे करवाना चाहते हैं उनको सही तरीके से समझाइए, क्योंकि आजकल के बच्चे कारण जानना चाहते हैं कि वो जो भी करें क्यों करें, और अगर वो आपसे सहमत हो जाते हैं तो वो अवश्य करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास ही धैर्य नहीं होता, हम प्रेम से उनको बात नहीं समझा पाते और गुस्सा ही करते हैं, हर बात में उनको हम गुस्सा करके कहेंगे, और परिणाम ये होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो आपका सामना करने लगते हैं, क्योंकि आपसे ही वो सीख लेते हैं कि अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा करो, और ये सब चीजें तनाव पैदा करती हैं। ऐसे ही वर्क प्लेस पर हम 8 घंटा बिताते हैं, वहां भी कई स्थितियां पैदा होती हैं, बीइंग फायर्ड, हमारे कोई ना कोई अधिकारी होते हैं, और वो अधिकारी यदि कठोर स्वभाव के हैं, हम बहुत परिश्रम करते हैं, उसकी हमें प्रशंसा नहीं मिलती, लेकिन हमने एक गलती कर दी छोटी, उसके लिए हमें 4 लोगों के सामने अपमानित कर दिया जाता है, या उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके हाथ में पावर्स होती हैं और वो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे बॉस से, अधिकारी से तनाव होता है। कंपीटिंग विद कलीग, कंपटीशन होता ही है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, लेकिन अगर हेल्दी कंपटीशन है तो ही हमारी प्रोग्रेस होती है, एंड इफ इट इज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, अगर नेगेटिव फीलिंग्स पर बेस्ड है तो फिर वो कंपटीशन हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक हो जाता है। आज खेलों में भी कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन वो भी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, खेलते ही हार जीत के लिए हैं, लेकिन उसमें भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूर रहे कि हम किसी का भी बुरा नहीं सोचें। ऐसे ही कन्फ्लिक्ट विद कलीग्स, साथियों के साथ, क्योंकि हमारे साथी तो होते ही हैं, अगर उनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, मतभेद हो जाते हैं, फिर काम तो उनके साथ ही करना है। ऐसे ही खेल में भी कई बार टीमें होती हैं, और वो टीमों में अगर हम तालमेल नहीं बिठा पाते सही तरीके से तो जीत मुश्किल हो जाती है, तो साथियों के साथ विचार मिलाना वो आवश्यक होता है। डिमोशन, कई बार प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाता है, यानी पद कम कर दिया जाता है, कुछ हमारे ऐसे गलतियां हो जाती हैं, खेलों में भी ऐसा हो जाता है कई बार कि वहां से सस्पेंड ही कर देते हैं, खेल से निष्कासित ही कर दिया जाता है। तो कहते हैं लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कंफर्ट्स, क्योंकि व्यक्ति की बदनामी होती है जो उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है। एक्सेसिव वर्कलोड, बहुत अधिक अभी जैसे कहा हम व्यस्त रहते हैं, बहुत जगह हमें संतुलन बनाना पड़ता है, अपने कार्य को समय पर पूरा करना होता है, वो भी तनाव देता है। नॉइजी एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, पूरी सुविधाएं नहीं है, आजकल ऐसे भी होता है खिलाड़ी जो हैं जरूर खेलना चाहते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अपने देश के लिए जीतना चाहते हैं, लेकिन देश उनको वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पाता है जो कि खेल के लिए उनको वातावरण मिलना चाहिए। ऐसा भी हो जाता है ओवर क्वालिफाइड, ये भी आज की समस्या है कि बहुत पढ़ लिख जाते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। तो ये देखा गया रिसर्च स्टडी में 40% एम्प्लॉयज को बहुत एक्सेसिव जॉब स्ट्रेस था, और जब उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए उचित कदम उठाए गए तो उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ गई, इतना फर्क पड़ गया। तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं भी हैं, ज्यादातर ऐसा सोचते हैं कि यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यदि हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तनाव जरूर होगा। क्या समझते हैं, सही है गलत है? सही है, जो समझते हैं सही है वो हाथ उठाएं। हाथ नीचे कीजिए, और जो समझते हैं सही नहीं है वो हाथ उठाइए। जो समझते हैं सही है वो ज्यादा संख्या है, तो मेजोरिटी विंस, ऐसा कहेंगे क्या? यहाँ आप देख रहे हैं एक ग्राफ दिखाया गया आपको कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो जरूर हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, यानी क्योंकि शरीर में कैटाकोलामिन्स बनते हैं और वो हमारे बॉडी सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और कुछ समय के लिए हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लेकिन हमारे शरीर की कीमत पर बढ़ती है क्योंकि इन सभी केमिकल्स का हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव होता है। तो देखने में आता है कई बार 35-40 साल की उम्र तक आते आते हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, जो नाम कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, वो प्राप्त कर चुके होते हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य की जांच कराते हैं तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है या डायबिटीज शुरू हो गई है या हार्ट की बीमारी शुरू हो गई है, और ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ कंट्रोल होती हैं, क्योर नहीं होती हैं। यानी एक बार होने के बाद जीवन भर इन बीमारियों के साथ जीना पड़ता है। तो आपने पहले 40 साल तो कमाया लेकिन अब जितना भी समय जीने वाले हैं अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च करते रहेंगे। एक बार ऐसे ही एक कंपनी के सीईओ थे, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ 35 साल की उम्र में सीईओ बन गए। अब बहुत दौरे पर जाना पड़ता था देश विदेश में, एक देश में उनको काफी लॉस हुआ, और जब लॉस हुआ तो आज तक उनको कभी भी असफलता की आदत नहीं थी, जीवन में सदा सफल रहे। तो जब असफल हो गए तो बहुत स्ट्रेस हुआ और उसकी वजह से उनको ये नहीं पता था कि मेरे हार्ट पर उसका इफेक्ट आ चुका है, तो हार्ट अटैक हुआ और इतना मैसिव हार्ट अटैक हुआ कि वो हॉस्पिटल पहुंचते तब तक उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर अगर वो 35 साल की बजाय 45 साल में सीईओ बनते तो शायद वो अपने परिवार समाज को ज्यादा दे सकते थे। तो कई बार हमारे स्वास्थ्य के लिए ये इतना हानिकारक हो जाता है, लेकिन यदि हम मोटिवेशन से काम करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करते हैं, आत्मविश्वास से कार्य करते हैं तो भी हम सफल होते हैं, लेकिन उसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर ये भी देखा गया कि हम दूसरों को ज्यादा जिम्मेवार ठहराते हैं अपने तनाव के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए। एक बार एक सास को पूछा गया सर्वे में कि उसका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने कहा कि मेरी बहू के कारण, मैं जो चाहती हूं वो नहीं करती है, ये मेरा और ही सामना करती है। फिर बहू को पूछा गया, उसका सिरदर्द होता था, आपको सिरदर्द क्यों हो जाता है, तो कहा मेरी सास के कारण, क्योंकि वो मेरे हर काम में गलती निकालती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही वर्क प्लेस पर मैनेजमेंट को पूछा गया तो मैनेजमेंट ने कहा कि वर्कर्स काम नहीं करते हैं, उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं तो वो यूनियंस बनाते हैं, हड़ताल करते हैं उसके कारण। हमें स्ट्रेस होता है। ऐसे ही जब वर्कर्स को पूछा गया तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट काम तो बहुत लेती है लेकिन जो वेतन हमें देना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब नहीं मिलती है। माता पिता को पूछा तो बच्चों के कारण, बच्चों को पूछा तो माता पिता के कारण। हर एक की उंगली किसकी ओर है? दूसरे की ओर है। तो अगर हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो तीन उंगली हमारे खुद की ओर होती है। तो मानो एक कमी, एक गलती सामने वाले की है तो पहले तीन कमी किसकी है? पहले तीन कमी किसकी है? हमारी है। तो किसको बदलना चाहिए? हमें। और हम क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल सही हूं, मैं जो सोच रही हूं, मैं जो कर रही हूं वो सही है, इनको बदल जाना चाहिए। और इसके कारण ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज। हम बदलेंगे तो ही दूसरों को परिवर्तन की प्रेरणा मिलेगी। चेंज हमेशा स्वयं से प्रारंभ होना चाहिए। एक बार ऐसे ही समुद्र में एक लड़ाई का जहाज जा रहा था और वो जहाज तूफान के कारण थोड़ा सा हिला। तूफान शांत हुआ तो कैप्टन ने सीमैन को बोला कि तुम डेक पे जाके देखो जहाज सही दिशा में चल रहा है। तो उसने देखा तो देखा जहाज तो सही दिशा में है लेकिन हमारे जहाज के सामने एक लाइट है। तो उसने कहा अपने कैप्टन को, तो कैप्टन ने कहा कि मैसेज कर दो चेंज योर कोर्स टू 20 डिग्री। मैसेज गया और रिटर्न मैसेज आया सामने से कि यू चेंज योर कोर्स टू 20 डिग्री। अभी कैप्टन ने बोला उनको पता नहीं है मैं कौन बोल रहा हूँ, तो उनको बताओ मेरे नाम से कि मैं फलाना कैप्टन बोल रहा हूँ और आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। तो वहां से मैसेज आया मैं सेकंड क्लास सीमैन बोल रहा हूँ, आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। अब ये कैप्टन को गुस्सा आ गया, उसने कहा उनको कहो ये लड़ाई का जहाज है, ये अपने दिशा नहीं बदलेगा, आपको ही अपने दिशा बदलनी है। तो वहां से मैसेज आया मैं लाइट हाउस हूँ, मैं अपनी दिशा कैसे बदल सकता हूँ। तो जब उनको समझ में आया कि ये लाइट हाउस है, फिर उन्होंने अपनी जहाज की डायरेक्शन को चेंज किया, लेकिन पूरी कोशिश किया कि वो बदल जाए। तो हम भी लाइफ में पूरी कोशिश करते रहते हैं कि दूसरे बदल जाए, लेकिन जब ये स्थिति समझ में आती है कि हमें ही बदलना होगा तब हम फिर कुछ प्रयास करते हैं। वर्क के बारे में, कार्य के बारे में यदि हम ये बहुत समझते हैं कि हम व्यस्त हैं इसलिए हमें तनाव होता है, तो वास्तव में काम से व्यक्ति को तनाव नहीं होता, लेकिन किस भावना से हम काम करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम अपने काम को पसंद करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं, प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, तो वो काम हमें खुशी देता है, उसमें हम सफल भी होते हैं। लेकिन जिस काम को हम पसंद नहीं करते और हमसे कराया जाता है और मानो हम मजबूरी से वो काम करते हैं, तो फिर वो थोड़ा काम भी हमें तनाव देता है। तो यहाँ पर हमें अपने आप को देखना है, क्या हम जो कर रहे हैं सचमुच हम पसंद करते हैं? और अगर पसंद नहीं करते हैं और उसे छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। तनाव में रहने से तो अच्छा है कि उसे छोड़ दिया जाए, पर हमेशा ये संभव नहीं होता क्योंकि सब चीजें इतनी सहज नहीं होती हैं। देन लर्न टू लव योर वर्क। अगर हमें वो करना ही है तो फिर उसे हम दिल से करने का अभ्यास करें, उसे सीखें जो भी हम कर रहे हैं। फिर कई बार डेडलाइंस की बात होती है, कई कंपनीज जो हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाती हैं और उनके लिए समय सीमा निर्धारित करती हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए। अगर उस समय पर वो काम पूरा नहीं होगा तो उनको लॉस हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा दबाव कर्मचारियों पर बनाया जाता है और कई बार रियली वो उनकी क्षमता बढ़ाता है। जैसे एक बार ऐसे ही एक बिजनेसमैन, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, इनकी इकलौती बेटी थी, तो उनको पता था कि बेटी की शादी करेंगे तो जो दामाद होगा उसे मेरा बिजनेस संभालना होगा, तो उसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए मेरे बिजनेस संभालने के लिए। तो उन्होंने एक शर्त रखी एडवर्टाइजमेंट में कि जो मेरे घर के बाहर स्विमिंग पूल है उसे एक कोने से दूसरे कोने तक तैर कर पार करेगा, उसके साथ मेरी बेटी की शादी होगी और कुछ इनाम भी उन्होंने घोषित किया। तो ये आसान शर्त थी और काफी लोग आ गए उसके लिए, पर देखा कि जो स्विमिंग पूल था उसमें सांप थे, बहुत सारे सांप थे। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसमें कूदे और उसे पार करे। तो इतने में एक युवक कूदा एक कोने से और बड़ी मुश्किल से सांपों से बचते हुए किसी तरह से दूसरे किनारे पर निकला। तो ये बिजनेसमैन वहीं खड़े थे और उन्होंने उसके निकलते ही उसको शाबाशी दी और उसको कहा कि मेरी शर्त के मुताबिक मेरी बेटी से आपकी शादी होगी, आप मेरा बिजनेस भी संभालोगे और आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे इनाम चाहिए ना मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, पहले मुझे उसे ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया है। तो यहां भी ऐसा होता है। अब उनकी क्षमता कैसे बढ़ी, जब चैलेंज सामने आ गया तो पहले वो नहीं समझ पा रहा था कि मैं ये सांपों वाले पूल को क्रॉस कर सकता हूं, लेकिन पुश मिलते ही उसने किसी भी तरह से उस पूल को क्रॉस कर लिया। तो कई बार थोड़ा सा प्रेशर इतना पॉजिटिव काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हम काम को जरूर व्यवस्थित रीति से करें लेकिन जरूरी नहीं है हम उसका तनाव महसूस करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट काम है वो हम पहले कर लें, लेस इम्पॉर्टेंट लेस अर्जेंट उसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, हम दूसरों का सहयोग लेकर के भी अपना काम समय पर पूरा कर सकते हैं। और जब हम तनाव से गुजरते हैं तब हम जरूर कुछ एफर्ट्स करते हैं अपने तनाव कम करने के लिए, और वो एफर्ट्स हैं मनोरंजन के साधन, एंटरटेनमेंट। हम सभी पार्टीज करते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करना, रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना, बाहर क्लब्स में जाना, आजकल लाफिंग क्लब्स भी होते हैं बड़े बड़े शहरों में, हंसाते हैं वो हंसना सिखाते हैं जैसे कि हम नेचुरल रूप से हंसना ही भूल गए हैं। फिर सिनेमा देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या गेम्स भी खेलते हैं। खेल जो हम गेम्स खेलते हैं वो तो हमारे को वैसे ही तनाव मुक्त करने वाले होते हैं। और कई बार ड्रग्स लेने लगते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा तरीका पसंद करते हैं, या व्यसन लेते हैं यानी स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग नींद की गोली भी खाते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है। और जितना समय हम एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं उतना समय हम बहुत रिलैक्स होते हैं, हमें लगता है कि हमारा तनाव बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही परिस्थिति फिर से सामने आती है फिर तनाव होने लगता है। मींस वो हमारे तनाव को सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं, दे आर नॉट द रियल रेमेडीज फॉर स्ट्रेस। जैसे मानो मुझे बुखार चढ़ा और मैंने एक क्रोसिन की गोली खा ली तो 4 घंटे 6 घंटे बुखार उतर जाएगा लेकिन फिर बुखार चढ़ जाएगा। अगर बुखार दूर करना है तो मुझे एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, या जो जर्म्स जिसके कारण फीवर आ रहा है उसको किल करने वाली दवाई लेनी पड़ेगी, तब वो जड़ से समाप्त होगा। तो यहां भी ऐसा है, पोस्टपोन करना माना सिम्टोमेटिक रिलीफ, थोड़े समय के लिए रिलीफ हो गया लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होता है। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि तनाव का मूल कारण क्या है, द रियल कॉज इज द वे वी थिंक अबाउट द सिचुएशन। उस परिस्थिति में हम जिस दिशा में सोच रहे हैं वैसा ही हम फील करते हैं, थिंकिंग लीड्स टू फीलिंग्स एंड फीलिंग्स लीड टू बिहेवियर, और फिर वैसा ही हम परफॉर्मेंस देते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, कोई भी परिस्थिति में हम नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान होता है, इसमें बुरा क्या हो सकता है, मेरी हानि क्या हो सकती है, अनिष्ट क्या हो सकता है, वो हम ज्यादा सोचने लगते हैं और विजुलाइज करने लगते हैं। फीलिंग्स पैनिक फियर एंड वरी। मानो आपका बच्चा घर से बाहर जाता है और आपको पता है कि रोज वो 7 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन आज 8 बज गए बच्चा घर नहीं आया, आपने कुछ नहीं सोचा 8 बजे तक, लेकिन 9 बज गए फिर भी बच्चा घर नहीं आया, अब क्या होगा, क्या थॉट आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें सारा दिन मिलती रहती है कि अगर कोई बाहर है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, माना उस शहर की जैसी परिस्थितियां हैं वैसे वैसे विचार, नेगेटिव विचार। और 1 घंटा और लेट हो गया, अब सोच सोच के मेरे दिमाग का प्रेशर इतना बढ़ चुका है, यानी जो फियर हो रहा है, हमें चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है। कहते हैं वो प्रेशर कुकर में तो सेफ्टी वॉल्व होता है ना, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वो वॉल्व खुलता है और सब प्रेशर रिलीज हो जाता है, लेकिन यहाँ दिमाग में तो कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है। तो एक बार प्रेशर बिल्ट अप हुआ और फिर अब बच्चा सामने आएगा तो कहाँ निकलेगा वो, 99.9% कुछ नहीं होता है, कोई एक जेन्युइन रीजन होता है जिसके कारण वो लेट हुआ। लेकिन अब हम समझने को तैयार नहीं, हम सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरा प्रेशर इतना ज्यादा है कि पहले उसे मुझे रिलीज करना है, वो कहना भी चाहता है या समझाना भी चाहता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर बच्चे क्या सोचते हैं, हमारे माँ बाप हमको समझ नहीं सकते, और माँ बाप सोचते हैं आजकल के बच्चों को हमारी परवाह बिल्कुल नहीं है, संबंध कैसे होंगे, संबंधों में दूरी बनने लगती है, विश्वास खत्म होने लगता है। अब यही हमने पॉजिटिव सोचा होता, एक पड़ोसी का बच्चा है वो रोज ही रात को 10 बजे आता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है वो 10 बजे आता है, वो कुछ सोचते ही नहीं उसके बारे में। तो हम कैसा सोच रहे हैं वैसा ही हम फील करते हैं। मानो ऑफिस में 2 लोगों से गलती होती है और बॉस बुलाते हैं उन्हें, एक है अपनी गलती को मानता है, सॉरी कह देता है और कहता है आगे से मैं ध्यान रखूंगा, बात वहीं खत्म हो जाती है और बॉस भी खुश। हाँ, लेकिन जो दूसरे को बुलाते हैं तो वो अपनी गलती नहीं मानता है और थोड़ा सिद्ध करने लगता है, नहीं इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, आप हमेशा ही मुझे कहते हो, यानी उसमें हम दूसरों को भी ब्लेम करने लगे, अब खुद भी नाराज बॉस भी नाराज, वो टेंशन चलता रहेगा। परिस्थिति उत्पन्न हुई लेकिन मैंने किस दिशा में उसे सोचा वैसा ही हमारी फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। तो इसीलिए एक जैसी परिस्थिति से हम कई लोग गुजरते हैं, लेकिन क्योंकि हर एक के सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग अलग होता है, उसी परिस्थिति में कोई खुश होता है, उसी में कोई डिप्रेस हो जाता है, कोई उसी को चैलेंज के रूप में लेता है, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है वो, तो इट डिपेंड्स। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति, उसके 3 बच्चे थे, वो 2 भाई थे, दोनों भाई की स्थिति में बहुत ही अंतर था। जो बड़ा भाई था वो अमीर था और उनके घर में सब सुविधाएं थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जो दूसरा भाई था वो गरीब था और उसके बच्चे जो हैं वो साधारण स्कूल्स में पढ़ते थे, सब सुविधाएं भी नहीं थी। तो वो तीनों बच्चे उस बात को सोचते थे, अब गरीबी की परिस्थिति है, तीनों ही फेस कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा बच्चा था वो सोचता था कि मेरे पिता गरीब हैं, वो हमारी सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमको जन्म ही क्यों दिया है, माँ बाप को दोषी ठहराने। फिर दूसरा बच्चा जो था वो सोचता था कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, एक हीन भावना उसके मन में आने लगी। और जो तीसरा था वो सोचता था मेरे माता पिता गरीब हैं तो क्या हुआ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसको समझ में आया कि उस उम्र में मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं, पढ़ लिख करके मैं कुछ बन जाऊं। तो सचमुच उसने बहुत मेहनत की और वो एक बड़ा अफसर बन गया, बहुत अच्छा काम वो करता था, तो एक बार उसको अवार्ड मिला। तो उसको पूछा गया तो उसने कहा कि मैं आज जो इस स्थिति पर पहुंचा हूं उसका कारण मेरे पिता गरीब थे, और जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया मैंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया, हालांकि मैं कोई बहुत जीनियस स्टूडेंट नहीं था। तो तीनों के सामने एक जैसी परिस्थिति, लेकिन तीनों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग और तीनों की जीवन बिल्कुल अलग अलग रही। तो ऐसे ही हम अपनी सोच को परिस्थितियों में बदल सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है, लेकिन मन को दिशा देना इतना आसान नहीं है। जैसे मैं कहूंगी मेरा ये हाथ है, मैं मर्जी से ऊपर कर सकती हूँ नीचे कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जितना हाथ को ऊपर नीचे करना आसान है उतना मन को डायरेक्शन देना आसान नहीं है। तो मन को दिशा देने के लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, और वो अभ्यास है मेडिटेशन। आप यहाँ 2 दिन में मेडिटेशन भी सीखेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास भी करेंगे, लेकिन जैसे हमने सुना स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी, तो प्रेशर्स को या तो हम कम कर दें अपने तनाव को कम करने के लिए, लेकिन प्रेशर हम नहीं कम कर सकते क्योंकि समस्याएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कोई समस्या कब पैदा हो जाएगी हमें पता नहीं होता, लेकिन हम अपनी कोपिंग एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कोपिंग एबिलिटी माना सामना करने की शक्ति, उसमें धैर्य रखने की शक्ति, मन को शांत रखने की शक्ति, ये हम बढ़ा सकते हैं, अपनी सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं। ये आंतरिक शक्तियां हैं, ये हमें बाहर से नहीं मिलती हैं, ये हमें भीतर से ही प्रयास करने होते हैं। और मेडिटेशन वो प्रयास है। राजयोग मेडिटेशन में दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। आपने सीखा सेल्फ रियलाइजेशन, आज मॉर्निंग सेशन में हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। नॉर्मली हम बाह्य मुखी होते हैं, जैसे हमने आपको बताया हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं ना, दूसरों को क्या करना चाहिए वो हम ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वी गो विद इन, हम अपने आप को देखते हैं। और जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मेरी कमी कहाँ है, मुझे अपने आप में कहाँ परिवर्तन लाना है, उसका समाधान क्या है। तो हमारा आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। और दूसरा स्टेप है मेडिटेशन में, वी कनेक्ट विद गॉड, जो ऑलमाइटी है, जो शांति के सागर हैं, तो उनसे कनेक्ट होते ही मन शांत होने लगता है, वो एनर्जी फ्लो होती है, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है, और बात हमें बहुत छोटी लगती है, यानी बड़ी बात भी हमें खेल जैसी लगती है। कई बार लोग कहते हैं ये सृष्टि एक रंगमंच की तरह है और इस पर जो भी बातें आती हैं उसे एक खेल की तरह, जैसे लोग मनोरंजन करते हैं तो मनोरंजन करने में खुशी होती है, फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो। लेकिन वो तब हम महसूस कर सकते हैं जब हमारा मनोबल ऊंचा होता है, तो योग से हम वो अनुभव करते हैं कि वो सर्वसमर्थ हमारे साथ है, हमारी मनस्थिति ऊंची है और तभी हमें सफलता मिलती है। हम देखते हैं इस संसार में जितने भी युग पुरुष हुए हैं उनका जीवन ऐसा ही था, कितनी भी कठिनाइयां उनके सामने आई उन्होंने उसे सहज रूप में पार किया। फिर योग अभ्यास के ऊपर काफी स्टडीज हुई हैं। 25 साइंटिफिक स्टडीज में ये सिद्ध हुआ है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारी बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होती है, जैसे स्ट्रेस में चेंज होती है, लेकिन वो हानिकारक है, वो जो केमिकल्स बनते हैं वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन योग के समय जो केमिकल्स बनते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स और सेरोटोनिन्स बनते हैं, और उससे हमारी हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, और हमारा पूरा सिस्टम एक बैलेंस में काम करने लगता है, यानी हमारा तन भी स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, तन स्वस्थ होता है। और इसीलिए हम देखते हैं आज योग लोकप्रिय हो रहा है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकालिए, इवन खेलों में भी कहते हैं कि खिलाड़ियों को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से हम रिलैक्स होते हैं, पीसफुल होते हैं, हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं, हमारी विल पावर भी बढ़ती है उससे। अब हमारी जो भी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है या वर्क प्लेस की लाइफ है, ये तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हम सभी कोई ना कोई रोल्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम हम करते हैं उस कार्य का असर हमारे ऊपर होता है। मानो हम ऑफिस में काम करते हैं और सारा दिन ऑफिशियल बने रहते हैं, लोगों से काम कराना होता है, लेकिन जब हम घर आते हैं तब हमारा रोल चेंज हो जाता है। वहां पर हम अफसर नहीं हैं, आप पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, दोस्त हैं, जो भी आपका संबंध है उस अनुसार वो आपसे स्नेह और अपनापन चाहते हैं। लेकिन वहां पर भी यदि हम अफसर का रोल प्ले करें तो हमारे घर वालों को हमारा वो व्यवहार पसंद नहीं आएगा, है ना। तो माना हमने ऑफिस का टेंशन घर में ले आया, ऐसे ही कुछ लोग घर का टेंशन ऑफिस में ले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, वर्कर हैं, काम करना पड़ता है, लोग हमसे काम कराते हैं, हमें कई बार गुस्सा भी आता है, हम कुछ कह नहीं सकते तो गुस्से को पी लेते हैं। फिर घर में आते हैं तो घर में परिवार वालों के ऊपर वो गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि घर में गुस्सा निकाल सकते हैं। तो यानी जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले नहीं कर पा रहे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाती है, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं है, वो हमारा रोल है जो हम प्ले कर रहे हैं ना। हम सोल हैं, आत्मा हैं, और आत्मा को ये शरीर इस संसार में कर्म करने के लिए मिला है। तो इस सत्य को समझते ही ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले कर पाए। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहां हनुमान का रोल प्ले करने वाला पहुंचा नहीं था। तो मैनेजर ने देखा कि पब्लिक आ चुकी है, मुझे शुरू करवा देना चाहिए। तो उसने एक वर्कर को बुलाया और उसको कहा, देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहनकर आ जाओ, बहुत आसान सा दृश्य है, रावण की दरबार लगी हुई होगी, वो आपसे सवाल पूछेगा तुम कौन, तो आप जवाब देना मैं श्री राम भक्त हनुमान, इतना ही आपको करना है, फिर हम संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने ड्रेस पहना हनुमान का, स्टेज पर आ गया, लेकिन पहले उसने कभी एक्टिंग नहीं की थी। और रावण का रोल तो कैसे होता है, वो बहुत शाउट करता है ना? तो उसने अपने रोल के अनुसार बहुत जोर से उसको बोला तुम कौन, वो बेचारा घबरा गया। उसने कहा मैं रामलाल रिक्शा वाला। अब जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें अपना रोल जैसे प्ले करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पाते हैं। फिर तनाव कम करने के लिए हमारे रूटीन्स यानी दिनचर्या भी व्यवस्थित होनी चाहिए। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या है, हम सारा दिन बहुत व्यस्त रहते हैं और जब शाम को रात को घर लौटते हैं तो रिलैक्स होना चाहते हैं। रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आवाज आ रही है, टेलीविजन देखते हैं मानो, जो खेलते हैं वो शायद गेम्स भी खेलते होंगे, डिपेंड्स। पर मानो अगर टेलीविजन देखते हैं तो आप टेलीविजन के सामने होते हैं, इस दुनिया की सबसे बुरी खबर दुनिया उस टेलीविजन की सबसे अच्छी खबर होती है, और वो हम न्यूज देख रहे हैं, हमारा तनाव कम होगा या बढ़ जाएगा। आप स्पोर्ट्स देखते हैं मानो, खेलों में हमको इंटरेस्ट है, आपकी मनपसंद टीम जीत रही है तो बहुत अच्छा, और अगर हार रही है तो हम कमेंट्स करते करते अब खुद भी अप्स एंड डाउन में जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर भी उसके साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। बहनें सीरियल्स ज्यादा देखती हैं, और वो सीरियल्स क्या हमें स्वस्थ मनोरंजन देते हैं या हमारी भावनाओं को दूषित कर देते हैं। और फिर टेलीविजन के सामने बैठे हैं तो देर रात सोएंगे, और जब हम देर रात सोते हैं तो समय पर सुबह उठ नहीं सकते, और समय पर नहीं उठे माना हमारी दिनचर्या समय से प्रारंभ नहीं होती, हम अपने आप को समय नहीं दे पाते, और हरी वरी एंड करी की स्थिति होती है, यानी जल्दबाजी में सारे काम हमें पूरे करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस समय पर जाना है, तो परिणाम होता है तनाव से ही दिन शुरू होता है। फिर कई बार हम देखते हैं बहुत सारे काम हमारे सामने हैं, हमको सारे काम पूरे करने हैं, हम कई काम एक साथ हाथ में ले लेते हैं। लेकिन सही तरीका यह है कि जो काम पहले शुरू किया है उसे हम पूरा करें, उसके बाद हम दूसरा काम हाथ में लें। कुछ लोग इसके विपरीत होते हैं, काम करना ही नहीं चाहते, आलसी होते हैं, सोचते हैं जितना हो जाता है हम कर लेते हैं, बाकी तो हम रिलैक्स रहते हैं। तो तनाव मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि हम आलसी हो जाएं या केयरलेस हो जाएं, हम एक्यूरेट एक्टिव अलर्ट रह करके अपना कार्य करें तब हम सफल होते हैं। तो दिनचर्या हमारी व्यवस्थित चले, यानी समय से सोना, समय से उठना, समय से कार्य करना। ऐसे ही संबंधों में हम रहते हैं, संबंध हमारे तनाव को कम भी करते हैं तो तनाव को बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमारे संबंध मधुर हैं तो हमें संबंधों में सहयोग मिलता है, क्योंकि हम अपना सुख दुख समस्याएं बांट लेते हैं। कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है, जो भी सुनता है वो हमें सहयोग देता है, हिम्मत बढ़ाता है, हमें आस बंधाता है और इस तरह से हम उस तनाव से बाहर आते हैं। लेकिन संबंधों में कई बार कुछ नेगेटिव बातें आ जाती हैं, जैसे एक्सपेक्टेशंस। हाँ, कई बार बहुत अपेक्षाएं हम रखते हैं समीप संबंधों में खास, और वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो फिर दुख होता है, वो तनाव पैदा करता है। कई बार संबंधों में जलसी, ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती है, या बहुत क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब जलसी आती है, हम देखते हैं हमारा साथी है बहुत उन्नति कर रहा है लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, तो ईर्ष्या होती है। पर कहावत है, चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी एक अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है, हमारा ही नुकसान होता है। इस संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, और तीसरे होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते हैं। ईर्ष्या हम किसे कहेंगे? ईर्ष्या हम किसे कहेंगे जो दूसरों को सुखी देख करके दुखी होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि संसार में कोई भी दो मनुष्य एक जैसे हो नहीं सकते, हरेक के कर्म और प्रारब्ध अपने अपने हैं। तो यदि मेरे जीवन का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है तो अपनी तुलना अपने आप से करें, दूसरों से कभी नहीं करें कि कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और मुझे क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में, मेरा गोल क्या है, तो हम प्रसन्न रह सकते हैं, नहीं तो कभी भी हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। गुस्से की स्थिति उत्पन्न होती है, कई बार हमें ऐसा गुस्सा आता है कि गुस्से में हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कई बार कहने वाला शायद भूल जाता है मैंने क्या कहा, लेकिन सुनने वाला नहीं भूल पाता, और उसका परिणाम होता है कि संबंध हमारे टूटने लगते हैं, संबंधों में प्रेम समाप्त हो जाता है। तो जहां भी संबंधों में है वहां अपने क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो हम दो तरीके अपना सकते हैं, ऐसे तो ये पूरा ही अलग विषय है लेकिन हम पोस्टपोन कर दें। मानो किसी भी कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या किसी ने मुझे झूठ बोला, या किसी ने मेरा अपमान कर दिया, कभी ऐसा होता है, तो हम सोचें हम अपनी बात कहेंगे लेकिन 10 मिनट के बाद कहेंगे मानो, तो वो जो 10 मिनट का समय है वो जो हम धैर्य रखते हैं उसमें दो बातें होती हैं। पहले तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, मेरी भी गलती है और इसलिए हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि सामने वाले की गलती है तो फिर तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है, वही बात हम शांति से कहते हैं, थोड़े अच्छे शब्दों से कहते हैं, फर्क पड़ता है। कोई बात हम गुस्से में कहते हैं और कोई बात थोड़ा अच्छी तरह से कहते हैं, रिस्पेक्ट देकर के कहते हैं, तो सामने वाला भी उसे स्वीकार करता है और हमें समाधान मिलता है। एक बार ऐसे ही एक अफसर थे, उन्होंने अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि एक जग पानी गिलास रख देना मेरे टेबल पर तो वो रखा और वो बीच बीच में मीटिंग में बहुत पानी पी रहे थे। मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, बाहर आए तो उनके असिस्टेंट ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि साहब लेकिन आप बहुत पानी पी रहे थे, क्या आप नेचुरोपैथी करते हैं या वाटर थेरेपी करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ना नेचुरोपैथी करता हूँ ना मैं वाटर थेरेपी करता हूँ, ये आज मैंने एंगल थेरेपी किया कि मुझे पता था कि मीटिंग में कुछ बातें ऐसी निकलेंगी जब मुझे गुस्सा आ सकता है, तो सामने वाला भी शांति से जवाब दे, अगर मैं शांत रहूंगा तो। इसीलिए जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं उसमें से कुछ पानी पी लेता था और उसके कारण मैं शांत रहा और सामने वाले ने भी शांति से जवाब दिया और मीटिंग सफल रही। तो पोस्टपोन किया उन्होंने, पानी पी करके अपने उस समय को थोड़ा सा निकाला। तो हो सकता है कि हमारे पास उस समय पानी ना हो लेकिन हम कोई भी विधि अपना करके थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। आपने यहाँ ओम शांति सीखा है, ओम शांति अगर हम मन में 10 बार बोलें तो ये शब्द ही एक मंत्र की तरह है और उससे मन में शांति की शक्ति आने लगती है। आपने समझा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। देखो खेल के मैदान में भी कई बार ऐसा हो जाता है खिलाड़ी गुस्सा कर जाते हैं जब उनको गुस्सा करना नहीं चाहिए और उसका परिणाम उनके कैरियर पर पड़ता है। कई खिलाड़ी ऐसे हुए हैं इतिहास में जिनको सिर्फ अपने गुस्से के कारण सस्पेंड कर दिया गया खेल से कि वो इतने मैच नहीं खेल सकेंगे, या गुस्से में आकर के उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कह दिए अपने साथी खिलाड़ियों को जो उनको नहीं कहने चाहिए। तो इसीलिए इमोशनल बैलेंस, खासकर जब हम खेल के मैदान में भी हैं, जितना हमारा भावनात्मक संतुलन होता है, अपनी भावनाओं पर हम जितना नियंत्रण कर पाते हैं उतना हम सफल होते हैं जिस भी क्षेत्र में भी हम हैं। तो इसीलिए अपने गुस्से को नियंत्रण करके हम अपने तनाव को काफी कम कर सकते हैं। ऐसे ही क्रिटिसिज्म की बातें होती हैं, कई बार कोई हमारी हर काम में कमी निकालते हैं, तो कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है, वो तो हमें अपना दुश्मन जैसा लगता है। तो वो हमारा मित्र हो सकता है क्योंकि वो हमें हमारी कमी बताता है। कई बार हमें अपनी कमी खुद नहीं पता चलती और वो कमी अगर हमने रियलाइज कर ली और उसे दूर कर लिया तो हमारी प्रोग्रेस होती है। खेल में भी हो सकता है कि हमारी किसी पॉइंट पर वीकनेस है और कोई हमारे ध्यान पर लाता है कि ये आप सही कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा खेलेंगे मानो। तो यदि हम उस पर ध्यान देते हैं तो सचमुच हमारी प्रोग्रेस होगी, लेकिन कई बार हम इसे नेगेटिव ले लेते हैं तो फिर वो हमें तनाव देता है। और ऐसा भी होता है कि कोई जलसी के कारण कई बार हमारे लिए गलत बातें करते हैं और हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो अगर ये स्थिति है हमें लगता है नहीं हमारे अंदर तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं, तो फिर हम ध्यान नहीं दें, यानी सुनते हुए भी हम उसे न सुने। हम ध्यान नहीं देंगे तो उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं आएगा। कभी कभी ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी वजह से हमसे जो गलती होती है हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने सॉरी कहा, सॉरी ऐसा शब्द है जो बात को वहीं खत्म कर देता है, मेरी गलती हो गई मैंने मान ली, तो हम कोई छोटे नहीं हो जाते उससे, लेकिन वहीं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती। ऐसे ही मानो कोई दूसरा गलती करता है तो हम उसे क्षमा कर दें, फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो उससे हमें फायदा है क्योंकि हमारा मन साफ हो जाता है उसके प्रति। तो दोनों ही बातें कि हम गलती मान लें और दूसरा गलती करता है तो उसे क्षमा कर दें, तो संबंधों में तनाव नहीं रहता है। कई बार हम अनुमान लगाते हैं संबंधों में और अनुमान और वहम के कारण संबंध बिगड़ने लगते हैं, हालांकि वो बात सत्य नहीं होती है। ऐसे ही अगर हम 3 A's का फॉर्मूला हम अपनाते हैं, एक्सेप्ट ऑल्टर एंड अवॉइड, तो भी हम काफी हद तक तनाव मुक्त रह सकते हैं। हमने समझा कि सभी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ बातों को जीवन में स्वीकार करके चलना पड़ता है। मानो हम जिनके साथ रहते हैं जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, हम देखते हैं कि उनका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है, हम उनको बहुत बार समझा चुके हैं लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आता, तो किसी का स्वभाव हम नहीं बदल सकते लेकिन उनको समझ करके उनके साथ कैसे चलना है वो हम कर सकते हैं। ऐसे ही मानो हमारे कार्य के साथी हैं, उनके साथ भी हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लें तो हमें तनाव कम होगा। कई बार कुछ अनहोनी हो जाती है जीवन में, अब जैसे भूकंप आ गया नेपाल में, अब अचानक कितने लोग कैसी परिस्थितियों से गुजरे होंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ है उसे स्वीकार करें और उसका समाधान क्या है, भविष्य में उसके लिए क्या किया जा सकता है वो हम सोचें, प्रॉब्लम को नहीं सोचें लेकिन उसके समाधान को, सॉल्यूशन को सोचें। ऐसे ही कुछ बातों में हम परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे हमारा अपना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। मुझे समझ में आता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी हम गुस्से में आ जाते हैं, या मुझे बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है, मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है या मेरी जेलस नेचर है, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये जरूर समय ले सकता है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो जरूर अपने आप में हम परिवर्तन ला करके अपने आप को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ बातों को हमें अवॉइड करना पड़ता है। जिस दुनिया में आज हम रहते हैं वो ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज माना संसार के दूसरे कोने में जो घटना हो रही है वो मुझ तक कुछ मिनट्स में पहुंच जाती है, और कई बार वो सचमुच बहुत तनावपूर्ण होती है, जैसे अभी हमने सुना। तो यदि हम साक्षी होकर के उसे देखते सुनते हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर उसका प्रभाव मेरे पर पड़ता है तो हम उसको अवॉइड करें, सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, या कुछ और भी ऐसी बातें होती हैं इस संसार की जो हमें प्रभावित करती हैं, तो फिर हम उस पर ध्यान ही ना दें। तो इस तरह से यदि परिस्थितियों में हम सकारात्मक दिशा में सोचते हैं, आशावादी रहते हैं, और उससे परिवर्तन करने के लिए अपने आप को हम समय देते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, रोज कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकालते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो शक्ति आती जाती है कि हम अपने मन की दिशा को बदलकर तनाव मुक्त, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ इसे समाप्त करूंगी। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम बुलाना जिंदगी है, जीत कर तो मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ओम शांति।
ओम शांति। डॉक्टर बीके सविता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें सरल और स्वभाव तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाया। हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, इसलिए हम एक बार फिर इनका तालियों के साथ थैंक्स करते हैं।